ओम शांति। मैं आत्मा ज्योति बिंदु अपने आप को इस भृगुटी के मध्य अनुभव करता हूं। यही मेरा वास्तविक स्वरूप सत्य स्वरूप है। मैं आत्मा अभृगुटी से निकल धीरे धीरे ऊपर की ओर इस साकारी दुनिया से परे सूर्य चांद सितारों से भी परे सूक्ष्म वतन में एक नन्हा सा फरिश्ता का स्वरूप धारण करता हूं। सामने अव्यक्त बाप दादा दोनों बाहें फैलाए हमें इशारे से बुला रहे हैं। जैसे मैं उनकी बाहों में समा जाता हूं, बाबा हमें स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। अब मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप में इस ड्रेस को भी छोड़ धीरे धीरे और ऊपर की तरफ जा रहा हूं। शांति धाम में, अपने परम धाम में। सत्यम शिवम सुंदरम परम पिता परमात्मा शिव बाबा के सम्मुख मैं आत्मा बेहद सुख और शांति का अनुभव कर रहा हूं। बाबा से सर्व शक्तियां ले मैं आत्मा पुनः धीरे धीरे नीचे की तरफ फरिश्ते ड्रेस में बाप दादा के सम्मुख हूं। बाबा कहते बच्चे जाओ संसार में सभी आत्माओं को सत्यता का अनुभव कराओ। स्वयं सत्य के मार्ग पर चल सभी को सत्य का बोध कराओ। मैं कहता हूं जी बाबा। मैं आत्मा बाप दादा से विदाई ले पुनः धीरे धीरे नीचे साकारी सृष्टि की तरफ आ रहा हूं। और अपने इस देह में प्रवेश करता हूं। ओम शांति, ओम शांति, शांति। परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने संसार में संसार की सभी विशेष चुनी हुई आत्माओं को एक रूहानी सेना बनाकर माया रावण के विरुद्ध एक युद्ध का शंखनाद किया है। यह युद्ध कोई हिंसक युद्ध नहीं है, यह युद्ध सत्य से असत्य की, धर्म से अधर्म की, अच्छाई की बुराई से है। और बाबा कहते हैं, बच्चे तुम कल्प कल्प के विजयी आत्मा हो, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जीत सदैव सत्य की ही होती है, सत्य मेव जयते। आज का जो टॉपिक दिया हुआ है, सत्य मेव जयते, वास्तव में एक भारत का प्राचीन साहित्य से लिया गया है, जो है मुंडकोपनिषद, जिसमें एक श्लोक आता है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वितितो देवयान, जिसका अर्थ है सत्य की सदा ही जीत होती है। जो ईसा से लगभग 250 वर्ष पूर्व अशोक सम्राट के कार्यकाल में, उस समय उसके द्वारा बनाया गया था एक स्तंभ, सिंह स्तंभ, उसमें से लिया गया है। अच्छा, सत्य के लिए बाबा ने क्या किया और बातें बताई, स्लोगन जैसे कि सत्य तो बीचो नट, और सत्य की नई नाव हिलती है डुलती है परंतु डूबती नहीं है, और सत्यम शिवम सुंदरम, और हाँ सत्य के सूर्य को असत्य के बादल कभी ढक नहीं सकते, और राम नाम सत्य सांच को कोई आँच नहीं, सच तो मीठो नच। सात बराबर तप नहीं, ओके, सच्चे दिल पर साफ राज, वेरी गुड, और साफ दिल मुराद हासिल, अच्छा ओके। परंतु आजकल जहां चारों तरफ अराजकता है, असत्यता का बोलबाला है, चारों तरफ ही भ्रष्टाचार है, ऐसे में एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कोई एक व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी धन से मतलब छल से कपट से उसकी प्रॉपर्टी ले लेता है, और वो आत्मा वो व्यक्ति न्याय पाने के लिए कहीं पर जाता है न्यायालय में, लेकिन चूंकि चारों तरफ असत्य का बोलबाला है तो वहां भी उसकी हार होती है, उसकी प्रॉपर्टी छीन ली जाती है। ऐसे में उसे यदि हम कहें ये सारे स्लोगन सत्य की सदा जीत होती है, तो उसे क्या अनुभव होगा, उसे क्या महसूसता होगी, क्या उसे इस पर विश्वास होगा? तो इसमें देखा जाए कि वास्तव में जो जीत और हार का जो मापदंड है वो क्या है, अगर देखें कि जिसने हार गया, जिसने अपनी मतलब कि केस को हार गया, क्या उसने अपने जीवन के अंदर कभी सत्यता का पालन किया, क्या कभी सत्य के रास्ते पर चला, अथवा कभी क्या उसने न्याय का साथ दिया, क्या उसने जीवन पर्यंत ऑनेस्टी का इस मतलब कि ऑनेस्टी की विचारधारा को लेकर चला, इस बात पर डिपेंड करता है। मतलब कि सामने वाले की बुराई से हमारे अंदर अच्छाई कितनी है, इस बात पर डिपेंड करती है हार और जीत का। जैसे कि बताया कि चारों तरफ मतलब कि हर एक इंसान वैसे तो चाहता है कि हम अच्छे रास्ते पर चलें, अच्छाई के मार्ग पर चलें, परंतु जैसे ही वो अपने कदम आगे बढ़ाना चाहता है कि हम सत्य मार्ग पर चलेंगे, लेकिन उसे एक सामने एक विशाल खाई का जैसे अनुभव होता है। वो समझता है जैसे ही हम उसमें कदम बढ़ाएंगे नीचे चले जाएंगे, गिर जाएंगे, इसलिए वो अपने कदम वापस खींच लेता है। क्योंकि अच्छाई और सत्यता ये तो सभी को पसंद है, क्योंकि कितनी भी तमोप्रधान दुनिया है, लेकिन बाबा कहते हैं कि फिर भी आत्माओं का जो दीपक है अभी तक बुझा नहीं है, टिमटिमाते मतलब कुछ रह जाता है, इसलिए सभी को पसंद तो आता है लेकिन उस मार्ग को अपना नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हिम्मत नहीं आती है आत्माओं को। तो ऐसे में परमपिता परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो वो जो खाई है, वो जो विषय सागर जैसा है जिसमें डरते हैं सभी जाने के लिए, मतलब उस पर उससे पार निकलने के लिए, तो बाबा एक हिम्मत का जैसे कि उस पर ब्रिज बनाते हैं, ज्ञान और योग का ब्रिज बनाते हैं जिस पर हम सभी बाबा की श्रीमत से उस पर सहजता से चलते जाते हैं। तो सत्य के मार्ग पर चलने के लिए जैसे कि कुछ पॉइंट्स है, सत्य बोल को ही ले लें हम, उसको पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं। सत्य बोल को जैसे कि कोई भाई अपना अनुभव बता रहा था कि जब अब से लगभग 15-20 वर्ष पहले उसे ये अवेयरनेस आया कि हमें सत्य बोलना है, उसके अंदर जागृति आई, उस दिन उसने अटेंशन दिया और सुबह से लेकर रात तक जब वो मतलब कि ये सत्य बोलने का प्रयास किया, फिर भी वो प्रयास करते करते लगभग 40-50 झूठ उसने बोले, तब उसने केयर किया कि ये तो मैं बहुत झूठ बोल रहा हूं। फिर उस दिन से उसने धीरे 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 वो प्रयास करते करते लगभग 15-20 वर्षों के बाद अभी भी वो बताता है कि मतलब 6 महीने में एक झूठ कभी गलती से, या साल में एक, ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसका बढ़ता जाता है। अब उसका मतलब कि ऐसा है, अगर गलती से भी ये बोल दे, कभी बहाना भी बना दे कि किसी कारणवश कि मेरे पेट में दर्द है, तो क्या होता है, सच में उस दिन उसके पेट में दर्द हो जाता है। मतलब उसको निगेटिव रूप में नहीं लेंगे। वो बता रहा था कि एक दिन पिकनिक पे कहीं जा रहे थे भाई बहन, सभी लोग बस में बैठे थे, तो एक छोटी बच्ची थी अपनी मम्मी के साथ आई थी। तो पिकनिक जा रहे हैं तो सभी को तो थोड़ा मस्ती जैसा रहता है। वो जैसे ही बस में चढ़ी, उसकी मम्मी पहले से उसमें बैठी हुई थी, वो थोड़ा ऐसे ही मजाक में थोड़ा बस में सीट के नीचे छुप गई और वो रोने लगी कि मेरी मम्मी कहाँ है, सभी को पूछ रही है, सब बोल रहे कि वो तो नहीं है, कोई बोला कि तो पीछे रह गई, बस चालू हो गई थी, वो तो पीछे रह गई, वो तो नहीं आई, ऐसे बोलते बोलते मतलब कि वो भाई के पास भी गई जो सत्य बोलता है। जैसे उसने बोला कि मुझे तो पता नहीं, जबकि उसे पता था, तो उसे क्योंकि छोटी बच्ची है, उसने उसको पहले कभी देखा नहीं था, कभी मिला नहीं था, वो उसे आंख दिखा रही है, बाकी किसी को तो कुछ नहीं बोली, उसे मतलब कि एक कंप्लेंट भरी, वो आंख दिखा रही है और बोल रही है, प्यार से बोल रही, आप भी झूठ बोल रहे हो क्यों, जैसे कि उसे क्यों लगा कि इसे सत्य बोलना चाहिए। फिर उसने बोला कि अरे हाँ, आपकी वो मम्मी, क्षमा मेरी माता, ऐसे आपकी मम्मी वहां बैठी है, तो फिर गई। तो मतलब कि ये सत्य बोल भी एक आभास दिलाता है लोगों को कि हाँ, इसके अंदर सच्चाई है। कभी कभी हम डर से और भय से कभी कोई गलती कर देते हैं, कभी कोई सेवा में त्रुटियां आ जाती है, कोई भी ऑफिस में कार्य करते कोई गलती हो जाती है, तो हम डर के मारे झूठ बोल देते हैं, क्या ये सही है। अगर हम सत्य बोलते हैं, सत्य बता देते हैं, तो हो सकता है हमें डांट पड़ेगी, हमें फटकार पड़ेगी, परंतु इससे हमारे ऊपर बड़ों का विश्वास और भरोसा बैठता है, और कहीं भी जाते हैं तो निश्चिंत होकर जाते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति सही है, तो उनके अंदर निश्चिंतता आती है, तो एक उनसे भी एक दुआएं प्राप्त होती है। दूसरा, ये इसे एक निगेटिव पहलू के रूप में भी न लें, जैसे कि ऐसा भी सत्य न हो कि किसी के घर में कलह हो जाए, या दो मित्रों के बीच में एक दीवार जैसी खड़ी हो जाए, तो इसको पॉजिटिव रूप में भी लेना है। अच्छा, कभी कभी सुनने में यह आता है कि क्या यदि ऐसे समय पर झूठ बोला जाए कि जैसे कि कोई वो जानवर मारने वाले होते हैं कसाई, वो किसी जानवर या गाय के पीछे पड़ा है, तो उसे बचाने के लिए क्या हमें झूठ बोलना चाहिए? क्या विचार आप लोगों को? हाँ, बाबा ने मुरली में बताई है कि जैसे कोई गृहिणी है, कोई माता है, हाँ कोई माता है, अगर पति उसे मतलब कि विकार में जाने के लिए बहुत वाद्य करता है, तो उस समय वो झूठ बोले कि मुझे सपने में इष्ट देव आए, कोई उन्होंने पवित्रता का व्रत धारण करने के लिए ये कहा है, लेकिन उस झूठ को क्या सदा लेकर इस अध्यात्म मार्ग में हम चल सकते हैं? बार बार हर कर्म में, हर बात में, मजाक में झूठ बोलते जाए, झूठ बोलते जाए, नहीं, ये तो गलत है ना। अगर वास्तव में देखा जाए, हमारे अंदर सत्यता की साधना लंबे समय से है, बहुत काल का है, तो उस जानवर जिसके पीछे कसाई पड़ा है, हम सत्य बोलकर भी उसकी रक्षा कर सकते हैं। वो सत्यता की इतनी पावर है, इतनी शक्ति, इतनी विल पावर है। उदाहरण के लिए एक भाई अपना अनुभव बताता है, जब वो अज्ञान काल में था तो उसे सभी लोग जैसे भगवान को ढूंढते थे, उसके अंदर भी इच्छा थी कि हम भगवान कौन है। उसके अंदर वो बताता है कि उसके अंदर तो ये भी कभी कभी आता था कि भगवान ईश्वर है ही नहीं। तो यदि उसके मन में कभी ये किसी व्यक्ति के प्रति निगेटिव भावनाएं आती थी और तुरंत उसी समय उसको ठोकर लगता था, तो वो खुश होता था, इसका मतलब भगवान है। वो उसके हाथ सामने मक्खी बैठी होती थी, वो ट्राई करता था अगर भगवान है तो इसे बचाएगा, हाथ में लेकर मैं मारता हूं इसे, अगर ईश्वर है तो उसे जरूर बचाएगा। वो पूरी प्रयास से उसे मारता था, वो बच जाती थी, तो आश्चर्य होता था उसे, क्योंकि कोई भी जानवर है, कोई भी कुछ भी है, पशु इंसान है, अगर उसकी मृत्यु निश्चित नहीं है तो उसे कोई मार नहीं सकता है, फिर ऐसे में हम झूठ क्यों बोले? नहीं, हाँ, उस समय बाबा ने किसी को भी श्रीमत जो देते हैं उसकी मानसिक अवस्था को देखकर, उसकी स्थिति को देखकर देते हैं। जैसे कोई कोई बच्चे कहते हैं जो फौज में आर्मी में रहते हैं, वो बोलते कि बाबा हमें ये भोजन खाना पड़ता है, वो बाबा बोलते ठीक है बच्चे दृष्टि देके खा लो, अगर वास्तव में उसके अंदर त्याग की भावना है तुरंत जॉब छोड़ देगा कि मेरा ये काम नहीं ये काम है, ये निश्चय की बात और अपनी अपनी मनोदशा की बात है। हाँ, क्योंकि उसकी मानसिक अवस्था उस समय डाउन है ना। हाँ, अब हम मानता हूँ मैं कि उस समय झूठ बोलना चाहिए, ठीक है, परंतु हाँ हाँ राइट है आपके बात, झूठ बोलना चाहिए, लेकिन क्या हम हर वक्त कहने मतलब झूठ बोल सकते हैं? क्या सदैव हम झूठ ये तो ठीक है। हाँ, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे एक कोई झाड़ का बीज है, उसे जमीन के अंदर डाल दिया गया, वो बीज के ऊपर एक परत रहता है, कवच रहता है, वो कवच तोड़कर वो नन्हा सा पौधा बाहर निकलता है, फिर उसके मतलब उसके जीवन की यात्रा आरंभ होती है, परंतु क्या वो कवच को सदा लिए, उस कठोरता को सदा लिए जीवन भर चल सकता है, उसका विकास हो सकता है? नहीं ना, उसको वहां पर छोड़ना पड़ता है। ठीक है, हमें झूठ बोलने की सिचुएशन आई, हमने बोला, लेकिन वहीं उसे छोड़ दे, अब अपने ऊपर का उस सत्यता का पालन करने का अभ्यास करें। और वास्तव में अगर लंबे काल से हम सत्यता का अभ्यास करते आ रहे हैं तो हमें हो सकता है कभी झूठ बोलने का वो समस्या ही नहीं आए, वो प्रॉब्लम ही नहीं आए। ऐसे हमने यदि सत्यता का लंबे काल का अभ्यास किया है और धारणाएं भी की है, ऐसे में हम यदि किसी को बाबा का एक शब्द भी बोलते हैं, ज्ञान भी देते हैं, तो उस ज्ञान को उठाने में उन्हें सहजता होती है। सत्य मार्ग पर चलने के लिए जैसे एक ऑनेस्टी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ईमानदारी का। जैसे कोई भाई अपना अनुभव सुनाते हैं, कईयों का अनुभव होगा कि कहीं वो कुछ खरीदने जाते हैं, गलती से व्यापारी उसे पैसा दे देता है ज्यादा, तो वो तुरंत उसे वापस करते हैं कि भाई ये एक्स्ट्रा पैसे आप ले लो। एक भाई अपना अनुभव सुनाते हैं कि एक बार वो कहीं से ट्रेन के थ्रू जा रहे थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उनके अंदर ऑनेस्टी थी पूरी। ट्रेन छूटने वाली थी बिल्कुल, टिकट लेने का समय ही नहीं था, और यदि ट्रेन छोड़ते तो पूरा दिन उन्हें बैठना पड़ता, सारा दिन, शाम को ट्रेन थी। तो उन्होंने क्या संकल्प लिया कि मैं ट्रेन में चढ़ जाता हूं, कि हमारे अंदर तो ऑनेस्टी का भाव है ही, मुझे तो ऐसा नहीं है कि मैं टिकट लेकर नहीं जाना चाहता हूं, मैं जाऊंगा ट्रेन में चढ़ूंगा। फिर वो जाके बैठ भी गए और उनके पास कोई टीसी भी नहीं आए, टीटी जो बोलते टीसी, वो उस स्थान पर पहुंचकर वहां उतरकर वो टिकट खरीदते हैं और टिकट जहां से आए थे वहां तक का टिकट लेके फिर फाड़ के फेंक देते हैं। मतलब ये दर्शाता है कि उनके अंदर देश की भावना, मतलब कि वो ये कहते थे कि हमारा जो है जो देश के प्रति जो हमारा भावना है वो भी होनी चाहिए, रेलवे में हमारा पैसे भी जाना चाहिए, योगदान भी देने चाहिए। अच्छा, कोई कोई भाई ऐसे बताते हैं कि वो चलते चलते कभी रास्ते में पैसे पड़े रहता है वो उठाते नहीं, उस पर बुद्धि नहीं लगाते हैं, सीधे चले जाते हैं। हाँ, कोई ऐसे करते हैं कि पैसे उठाएंगे अच्छे कार्य में लगाएंगे या बाबा के भंडारे में डाल देंगे, लेकिन वो बताते हैं कि हम अपनी बुद्धि उसमें क्यों वेस्ट करें, पता नहीं कैसा किसका, मतलब ये कुछ भी हो ये दिखाता है कि उसके अंदर वो पारदर्शिता कितनी है, उसके अंदर सत्यता कितनी है, वो अच्छा है, वो दर्शाता है उसे। तो वो हमारे अंदर में ऑनेस्टी भी ऐसी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यदि सेंटर का एग्जाम्पल दे रहा हूं, सेंटर में यदि कोई बड़ी बहन जी है और एक छोटी बहन जी है, समझ लिए, सपोज बड़ी बहन जी का स्वभाव थोड़ा स्ट्रिक्ट है, वो चाहती हैं कि जैसे मैं बोलूं वैसा हमारी छोटी बहन करे, वो उन्हें कहीं जाती है और बोलते हैं कि अगर कोई आए तो ना ये टोली किसी को बगैर मुझसे पूछे नहीं देनी है, वो देनी नहीं है आपको। वो चली कहीं चली जाती है वो, लेकिन उनका स्वभाव कड़क रहता है, वो थोड़ा कोई बात बात पूछने के लिए डरती है बहन। कोई दो जिज्ञासी आते हैं, दो जिज्ञासु सेंटर पर आते हैं, उसके मन में होता है कि टोली जरा इन्हें खिलाऊं, वो बगैर पूछे उसे टोली ये सोचकर खिलाती है, देती है कि चलो ये भी तो बाबा के बच्चे हैं इन्हें दे दो, वो खिलाती है उसे दे देती है, और अपने बहन जी को सपोज बताती भी नहीं है। बाबा मुरली में बताते हैं कि बच्चे छिपाकर भी खाना, ये भी क्या है, गलत है। ऐसे में यदि देखें तो दोनों उसके उसका भाव और भावना भी राइट है, लेकिन जगदीश भाई जी एक बार मैंने पढ़ा था, उन्होंने बताया है कि एक गुण को धारण करने के लिए दूसरे खून का दूसरे गुण का खून करना, क्या ये विवेक है? मतलब कि अगर हमें किसी को कुछ देना ही है तो ये तो न बताकर देना एक शॉर्टकट तरीका हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति को भूख लगी है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो वो सारा दिन मेहनत करके पैसे कमाकर भोजन की व्यवस्था करे, दूसरा रास्ता है चोरी का रास्ता, या तो किसी का पॉकेट काट ले और अपनी व्यवस्था करे। सिमिलरली ये भी ऐसे ही है, अगर हमें किसी को मतलब कुछ देने का अधिकार प्राप्त करना है छोटी छोटी चीजें, तो अपनी सेवा भावना से अपने व्यवहार से बड़ों का दिल जीते, फिर उसने उसके योग्य बन जाए कि हाँ मैं कर सकता हूं इतनी छोटी छोटी बातें, न कि चोरी का रास्ता अपनाएं। क्योंकि इसमें भी एक छोटी छोटी बातों का ध्यान देते हैं तो एक जैसे कि धीरे धीरे हमारे अंदर विल पावर आता है, और वो विल पावर क्या होता है, वो शक्ति क्या करती है, जैसे कि वो छोटी बहन ने दो आत्माओं के कल्याण के लिए केवल वो भावना रखी ना, लेकिन अगर हमारे अंदर सत्यता का ऑनेस्टी का पावर आता है तो हम करोड़ों आत्माओं का भविष्य में कल्याण करने वाले हैं, तो हमें विल पावर एकत्रित करना है ना। अच्छा, तीसरा, सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए त्याग का भी आवश्यकता पड़ती है, त्याग की भी भावना कभी कभी रखनी पड़ती है। जैसे सच्चे मार्ग पर चलने के लिए लोग ने अपने अपने कभी कभी घर को भी त्याग दिया, कहीं कहीं पर किसी ने जैसे रामायण में दिखाया अपने राज्य को ही त्याग दिया। तो त्याग का भी होना बहुत जरूरी है जीवन में इस मार्ग पर चलने के लिए। अब ऐसे छोटी छोटी जो ये गुण है सत्यता का, ऑनेस्टी का, ये जैसे छोटे छोटे रास्ते हैं चलने के लिए, एक पगडंडियां हैं चलने के लिए। इस पगडंडी और रास्ते पर चलते चलते आगे चलकर एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, मतलब हाँ ये जो व्यक्ति है सच्चा है, ऑनेस्ट है, एक अपने आप को ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाता है, तैयार करता है अपने आप को सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे परमात्मा स्वयं यूज करे, कहीं भी उसे अपनी सेवा के कार्य में लगाए। कल ज्ञान सरोवर से लाइव प्रोग्राम आ रहा था आदरणीय शिवानी बहन जी के, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिए जो हमें अच्छा लगा कि जैसे ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स लोग ऑपरेशन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ऐसे ही हम अपने आप को ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाए कि परमात्मा हमें इंस्ट्रूमेंट समझकर यूज करे, अपने आप को ऐसे बनाए। तो इंस्ट्रूमेंट मतलब कि सभी जानते हैं कि अपने आप को पूरी तरह से परमात्मा के प्रति सरेंडर कर देना, हम कुछ नहीं है, वो ऐसा बनना, योग्य बनना कि ताकि हमें परमात्मा यूज करे। और ऐसे में हमारे अंदर अगर हम उनके ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं तो हमारे अंदर शांति, धैर्यता, निर्भयता ऑटोमेटिकली आते रहते हैं। तो इस मार्ग पर चलने के लिए हमें सहजता होती है। दो व्यक्तित्व का एग्जाम्पल ले रहे हैं, दो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का, कि एक व्यक्ति का कैरेक्टर ऐसा है जो मतलब कि अच्छाई पर चल रहा है, लंबे काल से उसके अंदर सत्यता का, ऑनेस्टी का एक प्रोग्रेस, एक पुरुषार्थ, एक तपस्या, एक साधना चल रही है धीरे 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 धीरे। और दूसरे तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो धीरे धीरे बुराई के रास्ते पर चल रहा है, बुराई के रास्ते पर चलते चलते वो मतलब कि नाम, मान को, नाम को, शान को, इसको प्राप्त करता है, वैभव को प्राप्त करता है, वो लोगों का समर्थन प्राप्त करता है, वो इतना अत्याचार करता है जैसे कि माताओं बहनों के प्रति भी दुराचारी जैसे बनता है, एक तरफ बुराई का हाईएस्ट पोजीशन पर और एक तरफ एक साधना के हाईएस्ट पोजीशन पर। अब वो इंस्ट्रूमेंट बन गया है तपस्या का, साधना का, सत्यता का, और ये दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट जो समाज के प्रति बहुत ही गलत है। ड्रामा प्लान अनुसार दोनों का आमना सामना परमात्मा कराते हैं, वहां पर जीत सत्यता की होती है और वो सदा काल के लिए जैसे कि जेल में। दूसरा एग्जाम्पल जैसे एक तरफ है राम जो रामायण में दिखाया है, उसका सदा काल से सच्चाई के प्रति, सत्यता के प्रति, लोगों के कल्याण के प्रति ये भावनाएं उसके अंदर, त्याग की, तपस्या की, सेवा की। दूसरी तरफ रावण की, उसके बुराइयों की, दोनों की यात्रा आरंभ होती है ऊपर की तरफ, हाईएस्ट पोजीशन की तरफ। सीता निमित्त बनती है, दोनों का युद्ध होता है और जीत किसकी होती है? राम की। इसमें ये देखें कि दोनों ही बातों जो एग्जांपल दिया, इस बीच में ऐसा नहीं कि कोई दूसरों ने प्रयास नहीं किया था, सत्य मार्ग पर चलने वाले और भी बहुत सारे सिपाही थे ना, लक्ष्मण थे, हनुमान थे, बहुत ने, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने जताया नहीं, किसी ने सामना नहीं किया। बहुत देवी देवताओं ने भी सामना किया लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको बंदा की बना के रख लिया, उसको तो एक ठोकर में जैसे गुड़ा दिया। लेकिन उसी बात पर दोबारा आ रहे हैं कि किसी बहुत बुरे व्यक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करती है तो उसकी तुलना में हमारे अंदर अच्छाई बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो राम क्या है, संपूर्णता का ही प्रतीक है पूरा वो, इसलिए वो जीत प्राप्त किया, ना कि देवी दूसरे देवी देवताएं जीत प्राप्त कर सके। तो हमारे अंदर वो इतना सत्यता का पावर होनी चाहिए, इतना प्रकाष्ठा होनी चाहिए इस पूरे समाज को परिवर्तन करने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बाबा ने 92 की एक मुरली में बताया है, कि चूंकि असत्य का साम्राज्य है, असत्य का बोलबाला है, तो बच्चे अल्पकाल की जीत असत्यता की होती है, अल्पकाल की जीत असत्यता की होती है, परंतु सदाकाल की जीत सत्य की होती है। वो जो अल्पकाल की जीत जो असत्यता की होती है, तो उन लोगों के मन में अल्पकाल के लिए भी खुशी और मौज में रहते हैं, लेकिन जब समय आता है, सत्यता जब जीतती है सदाकाल की, तो वो उनकी अल्पकाल की खुशी और मौज सदाकाल के लिए दुख और पश्चाताप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि सत्य की जीत सदैव होती होती है, सत्य में हो जाते। हाँ, इसमें जब ये चिंतन कर रहा था, इसमें तैयारी कर रहा था, तो ये कर्म जी पूरे हफ्ते लग गए, पूरे यही चल रहा था तो इसमें जब कार्मिक अकाउंट का बात विचार में आ रहा था, तो फिर सोचा अगर इसमें डालते हैं तो काफी एक कॉम्प्लिकेटिव, एक जटिल हो जाएगा, तो हमने इसको साइड ही कर दिया कार्मिक अकाउंट को। ये जो हमने राम और रावण का जो एग्जांपल बताया, इसमें इसमें बहुत अच्छी बात देखने को मिली। लास्ट में जब रावण का संहार होता है, तो जैसा आमतौर पर किसी व्यक्ति को सजा दो जो गलत करता है, जो ऐसे उसको मार डालो या सजा दिला दो, तो उसके अंदर भावनाएं कैसी रहती है, घृणा की भावनाएं, बदले की भावनाएं रहती है। परंतु रावण के मन में ऐसा नहीं था, वो तो पूरा तरह से आत्म जैसे समर्पण कर दिया, हे राम किया दिल से। दूसरा, अगर महाभारत में देखें, बहुत सारे असुरों का विनाश किया कृष्ण ने, जैसे अगर शिशुपाल का ही उदाहरण दे, उसको मारा तो उसकी आत्मा ने उसको धन्यवाद दिया दिल से, मतलब कि ये हिंसक बात नहीं है। उसने अपनी श्रेष्ठ वृत्तियों से एक ऐसे व्यक्तित्व जिसके अंदर निगेटिव वृत्तियां, उसको समाप्त किया, न कि हिंसा युद्ध हिंसा की बात नहीं है, उसको उन विकारों से मुक्ति दिलाई, तो वो दिल से मतलब कि वो उसके शरण में गए। तो कहने का मतलब ये कि हमारे जो वास्तविक वास्तविक जीत है, वो किसी आत्मा को जीतना, किसी के दिल को जीतकर अपना बना लेना, ये वास्तविक जीत है। जैसे कि सुनने में आता है एग्जाम्पल है कि हमारे आदि पिता ब्रह्मा बाबा को किसी व्यक्ति ने मारने के उद्देश्य से आया, लेकिन क्या हुआ, वो उनकी स्थिति देखकर, उनकी अवस्था देखकर, या साक्षात्कार को वो वारी गया उन पर, ना बलिहार गया, दिल से हार गया, सदा सदा के लिए उसकी भावनाएं परिवर्तित हो गई। दूसरा एग्जाम्पल मम्मा का, मम्मा के सामने ऐसे ही जब विरोधी आए तो क्या हुआ, मामा करके उनकी शरण में बैठ गए। तो वास्तविक जीत यही है, और बाबा भी यही सिखाते हैं कि बच्चे सभी के दिल को जीतो, यही सच्ची जीत है। ओके, सत्य में जयते। ओम शांति।